नमस्कार भारत, 28 जुलाई दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। रूस की राजधानी मॉस्को में विपक्षी नेताओं के समर्थन में प्रदर्शन, स्थानीय चुनाव पर रोक को लेकर सवाल, कई गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस का दावा, बस्तर मुठभेड़ में करीब 12 संदिग्ध माओवादियों की मौत।
बड़ी सफलता है स्टेट के एसटीएफ की और डीआरजी की, इस मुठभेड़ में मेरे ख्याल से एक दर्जन के ऊपर नक्सली मारे गए हैं।
भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया, महबूबा बोली,
ये ठीक नहीं है, इससे लोगों के दिलों में बहुत ही जकूक पैदा हुए हैं। जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है।
और कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी का निधन। खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी का रविवार अलसुबह 77 साल की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से बीमार थे। वो इंद्र कुमार गुजराल सरकार और बाद में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की दोनों सरकारों में मंत्री रहे थे। उन्होंने उस समय आंध्र प्रदेश और वर्तमान में तेलंगाना की मिर्यालगुड़ा और चेवेला सीटों का प्रतिनिधित्व किया था। रूस में 30 विपक्षी नेताओं को सितंबर में होने जा रहे स्थानीय चुनावों में हिस्सा लेने से रोके जाने के विरोध में शनिवार को मॉस्को में प्रदर्शन हुआ। रूस के गृह मंत्रालय के अनुसार इस प्रदर्शन में शामिल 1000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने कुछ विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया था और उनके दफ्तरों पर छापेमारी की थी। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की बड़ी रैली पर पुलिस ने शनिवार को आंसू गैस के गोले छोड़े। ये प्रदर्शनकारी पिछले सप्ताह नकाबपोश हथियारबंद लोगों के हमले के खिलाफ उत्तरी जिले यूएन लोंग में मार्च कर रहे थे। पिछले हफ्ते हुए हमले में जख्मी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता लाम श्यूक तिंग ने कहा कि लोगों में इस हमले को लेकर बहुत गुस्सा है। हांगकांग के बहुत से लोग गुंडों के उस बर्बर हमले से नाराज हैं। हम पुलिस से भी खफा हैं क्योंकि उन्होंने उस दिन इस हमले को रोकने की कोशिश ही नहीं की थी। उन्होंने हमलावरों को आराम से जाने दिया। ये थे हांगकांग की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता लाम श्यूक तिंग के शब्द। हांगकांग में पिछले 7 हफ्तों से सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन एक विवादित विधेयक के लाए जाने के खिलाफ शुरू हुए थे, जिसमें अपराधियों को चीन में मुकदमा चलाने के लिए प्रत्यर्पित करने का प्रावधान था। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रून लिमेयर ने अमेरिका से गुजारिश की है कि वो बदले की भावना से कोई टैक्स न लगाए। दरअसल फ्रांस ने प्रमुख इंटरनेट कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने की योजना बनाई है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं हैं। उन्होंने बदले में फ्रेंच वाइन पर आयात शुल्क लगाने के संकेत दिए थे। फ्रांसीसी वित्त मंत्री ने टेक कंपनियों पर टैक्स को लेकर अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय समझौते की चर्चा करने की अपील की है। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा,
Please do not mix the two issues. The key question now is not the question.
कृपया दो मुद्दों को आपस में न जोड़ें। अभी सवाल वाइन पर लगने वाले आयात शुल्क को लेकर नहीं उठा है। सवाल ये है कि कैसे हम डिजिटल एक्टिविटी और इसे लेकर न्याय संगत कर प्रणाली को लेकर आम सहमति बना सकते हैं। ये थे फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रून लिमेयर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नस्लवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के अफ्रीकी अमरीकी सदस्य इलिजा कमिंग्स को ट्रंप ने दादागिरी करने वाला क्रूर शख्स और उनके इलाके को घिनौनी और चूहों से भरी अस्त व्यस्त जगह करार दिया था। कमिंग्स ने अमरीका और मैक्सिको की सीमा पर प्रवासियों के लिए बनाए गए हिरासत केंद्रों पर ट्रंप प्रशासन की नीतियों की आलोचना की थी। इसके बाद ही ट्रंप ने उनके ऊपर टिप्पणी की थी। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू हो गया है। मतदान 28 सितंबर को होगा। इससे पहले 2 बार चुनावों को टाला जा चुका था। इस बार 18 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी, अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद हनीफ अतमार शामिल हैं। म्यांमार सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों में रह रहे रोहिंग्या समुदाय के नेताओं से मुलाकात की है। इनके बीच रोहिंग्या शरणार्थियों की स्वदेश वापसी पर चर्चा हुई। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। रविवार की सुबह दिल्ली के आसमान में बादल छाए हुए हैं और आज के लिए दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई शहरों में बारिश का पूर्वानुमान है। लगातार हो रही बारिश की वजह से देश के कई हिस्से बाढ़ की दिक्कत से जूझ रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी हिस्से में हैं तो सतर्क रहें। इस बीच जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक राजनीतिक तापमान भी चढ़ा हुआ है। हम बात करेंगे भारत की राजनीति की, लेकिन शुरुआत में चर्चा रूस की, जहां राजधानी मॉस्को में विपक्षी नेता और उनके समर्थक नाराजगी में उबल रहे हैं। दरअसल वहां सितंबर में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और करीब 30 नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। इसके विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और इनमें से करीब 1,000 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरी रिपोर्ट आदर्श राठौर से।
ये आवाज है रूस की राजधानी मॉस्को के सिटी हॉल के बाहर जुटे प्रदर्शनकारियों की, जो नारे लगा रहे हैं, ये हमारा देश है और शर्म करो। उनकी नाराजगी इस बात से है कि विपक्षी दलों के कई उम्मीदवारों को सितंबर में होने जा रहे स्थानीय चुनावों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। इसी के विरोध में शनिवार को बड़ी संख्या में लोग मॉस्को की सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया, मगर पुलिस ने इन प्रदर्शनों को अवैध बताते हुए भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। पुलिस का कहना था कि ये रैली बिना इजाजत हो रही थी, लेकिन एक पत्रकार और रूस के सिविक चैम्बर के सदस्य निकोले स्वानिद्जे ने कहा कि रूस के लोगों को विरोध करने का मौलिक अधिकार है। रूस के संविधान के मुताबिक सभी नागरिकों को इकट्ठा होने और अपने जीवन के सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। प्रशासन की अनुमति न मिलने के आधार पर प्रदर्शनकारियों को हटाया नहीं जा सकता। ये थे एक पत्रकार के शब्द। रूस के गृह मंत्रालय के अनुसार इस प्रदर्शन में शामिल 1,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। रूस में सितंबर में स्थानीय चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन 30 विपक्षी राजनेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। रूसी प्रशासन ने उनकी उम्मीदवारी के समर्थन के लिए जरूरी हस्ताक्षरों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि ये बहाना है और नेताओं को राजनीतिक कारणों से चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। शनिवार को हुए प्रदर्शनों से पहले पुलिस ने कुछ विपक्षी नेताओं को भी हिरासत में लिया था और उनके दफ्तरों पर छापेमारी की थी। ऐसा ही प्रदर्शन पिछले शनिवार को भी हुआ था, जिसमें 20,000 लोगों ने निष्पक्ष चुनावों की मांग को लेकर हिस्सा लिया था। लेकिन इस शनिवार को कितने लोग शामिल थे, ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना तय है कि संख्या में भारी कमी आई है। पुलिस का दावा है कि इस बार 3,500 लोग ही जुट पाए और उनमें भी 700 पत्रकार थे।
रिपोर्ट सुना रहे थे आदर्श राठौर। और अब से कुछ वक्त पहले खबर आई है कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी का निधन हो गया है। वो 77 साल के थे। मैंने उनके राजनीतिक योगदान को लेकर बात की अपने सहयोगी इमरान कुरैशी से।
जी, जयपाल रेड्डी साहब कई समय से बीमार रहे हैं और अभी खबर आई है कि वो उनका निधन हो गया है। जयपाल रेड्डी साहब एक रेयर पॉलिटिशियन थे, तो इसीलिए उनको बहुत लोग शायद याद रखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही सीधे साधे थे, बड़े ईमानदार थे। वो जनता दल में भी थे, कांग्रेस में भी थे और दोनों पार्टियों के वो प्रवक्ता भी थे। बहुत ही आर्टिकुलेट इंसान थे वो, और वो केंद्रीय मंत्री थे यूपीए की सरकार में। जी, वो दक्षिण भारत मतलब आंध्र प्रदेश के थे, मगर वो दक्षिण भारत है जो बहुत बड़े मतलब बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे, और उनको 1998 में उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिला था।
जयपाल रेड्डी का निधन, जानकारी दे रहे थे इमरान कुरैशी। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में कल पुलिस और संदिग्ध माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस का दावा है कि इस मुठभेड़ में करीब 12 संदिग्ध माओवादियों की मौत हो गई, हालांकि अब तक 7 शव ही मिले हैं। सुनिए आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
बस्तर जिले में ओडिशा से लगे हुए तीरिया जंगल के इलाके से जब शनिवार की शाम को पुलिस और माओवादियों के बीच कथित मुठभेड़ की खबर सामने आई, तो किसी को भरोसा नहीं था कि इस मुठभेड़ में इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध माओवादी मारे जा सकते हैं। यह कथित मुठभेड़ ऐसे समय में हुई है जब आज से माओवादी देश भर में शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी इसे बड़ी कामयाबी मानकर चल रहे हैं।
बड़ी सफलता है स्टेट के एसटीएफ की और डीआरजी की। इस मुठभेड़ में मेरे ख्याल से एक दर्जन के ऊपर नक्सली मारे गए हैं। 7 लोगों की डेड बॉडी बरामद की है फोर्सेस ने। कुछ लोगों के शव माओवादियों शायद अपने साथ ले जाने में सफल हुए।
जानकारों का कहना है कि जिस इलाके में कथित मुठभेड़ की घटना हुई है उस इलाके से माओवादी हिंसा की खबरें सालों पहले सामने आई थी। दंतेवाड़ा से प्रकाशित होने वाले अखबार बस्तर इम्पैक्ट के संपादक सुरेश महापात्र कहते हैं,
तुलसी डोंगरी से सटा हुआ इलाका है और काफी पहले तीरिया इलाके में मुठभेड़ की एक सूचना आई थी, पर इतनी बड़ी कोई सफलता थी नहीं। इस तरह से मुठभेड़ में नक्सलियों का मारा जाना वास्तव में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है।
पुलिस ने जिस हिस्से में संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है वह गैर आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है। जाहिर है बस्तर में आदिवासियों के बीच में ही माओवादियों की पैठ है। कल हुई कथित मुठभेड़ की घटना के बाद यह धारणा भी टूट गई। सुरेश महापात्र कहते हैं,
नक्सलियों को लेकर एक बड़ी धारणा बस्तर में रही है कि जहां अंदरूनी जो ट्राइबल क्षेत्र है वहां पर ही नक्सलियों की एक आमदरफ्त होती रही है। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है ये उड़ीसा से सटा हुआ इलाका है और इस इलाके में आदिवासी जनजाति के ज्यादा लोग वहां पर नहीं है।
फिलहाल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना से लगे हुए छत्तीसगढ़ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जिस हिस्से में शनिवार की शाम कथित मुठभेड़ हुई है वहां सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा गया है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
उधर भारत प्रशासित कश्मीर में केंद्र सरकार के सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य में साझेदारी कर चुकी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया है। वहीं आम लोग भी इस फैसले को लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं। सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
गृह मंत्रालय की ओर से कश्मीर घाटी में सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज यानी CAPF की मजीद 100 कंपनियों की तैनाती के आदेश के बाद कश्मीर में आम लोगों से लेकर राजनीतिक दल तक इस हंगामी स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। 2 दिन पहले गृह मंत्रालय का एक ऑर्डर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिस ऑर्डर में बताया गया है कि कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड को मजबूत बनाने और कानून व्यवस्था को काबू में रखने के लिए सुरक्षा बलों की 100 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में चुनाव कराने के लिए पहले से ही 300 कंपनियां मौजूद हैं, जिन्हें चुनावों के बाद सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर घाटी में रखा गया है। घाटी में मजीद 100 कंपनियों की तैनाती की खबरों के बाद राजनीतिक दल भारत सरकार के इस कदम का विरोध करते नजर आ रहे हैं। PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों को बताया है कि 100 कंपनियों की तैनाती की खबरों के बाद आम लोगों के अंदर खौफ पैदा हुआ है।
ये ठीक नहीं है, इससे लोगों के दिलों में बहुत ही जो है शकूक पैदा हुए हैं और जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। इसमें जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान को भी जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो खाली ये जो फौज के बलबोते पे या सिक्योरिटी फोर्सेस के बलबोते पे जम्मू कश्मीर में आप आर्जी तौर तो अमन कायम कर सकते हैं मगर देर पर अमन के लिए मसले कश्मीर को हल करना बहुत जरूरी है।
उधर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन और पूर्व ब्यूरोक्रेट शाह फैसल का कहना था कि किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि भारत सरकार कश्मीर में क्या करने जा रही है।
हमने देखा कि पिछले 2 दिन से कोई भी सीनियर पर्सन ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया इस मसले पे, उस वजह से काफी ज्यादा अप्रिहेंशन का माहौल बना हुआ वहाँ पे। मगर एक तरह का है अप्रिहेंशन है, अच्छा है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा स्टेप जल्दबाजी में न लिया जाए जिसकी वजह से हालात खराब हो सकते हैं।
अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर रशीद कहते हैं कि दिल्ली कश्मीरियों से सब कुछ छीनना चाहती है।
आज जिस चीज को लेकर यहाँ पर तशवीश है वो ये है कि कश्मीर के लोग मसले कश्मीर के हल की बात करते थे, उन्हें पता था कि अगर उनके पास 4 आना है वो 1 रुपया मांग रहे थे, लेकिन अब नई दिल्ली उन्हें कहते हैं कि आपके पास जो 25 पैसा है वो भी आप वापस दे रहे।
कश्मीर में 100 कंपनियों की तैनातों की इन खबरों के बाद आम लोग भी खौफ की स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। एक आम कश्मीरी गुलाम अहमद,
इसे बताया गया मजीद फौज आ रही है, यहाँ तो पहले से ही बहुत सारी फौज है, तो हमें ये बताया जा रहा है और फौज आ रही है। फौज आने का मतलब ये है कि किसी गड़बड़ का खदशा है।
हालांकि जम्मू कश्मीर BJP के अध्यक्ष रविंदर राणा ने बताया है कि सुरक्षा बलों की तैनाती होने वाले चुनावों के लिए की जा रही है।
ये उमर साहब महबूबा जी जो ट्वीट करके लोगों में डर खौफ ऐसे दहशत और अफवाहें फैला रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र रहें। हाँ, रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, الیکشن کے نقطہ نظر سے یہاں ایڈیشنل فورسز کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے۔
ادھر سی آر پی ایف کے آئی جی روی دیپ ساہی کہتے ہیں کہ سرکشا بلوں کی تعیناتی ایک معمول ہے۔ کشمیر میں مزید 100 کمپنیوں کی تعیناتی کا معاملہ ایک ایسے سمے میں سامنے آیا ہے جب بھارت سرکار نے کشمیر میں چرم پنتھ اور الگاواد کے خلاف اپنی لڑائی کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ بیتے 2 ورشوں میں بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے کشمیر کے کئی الگاوادی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کو ٹیرر فنڈنگ اور دوسرے معاملوں میں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا ہے۔ بیتے 4 ورشوں میں کشمیر میں سرکشا بلوں کے ساتھ مٹ بھیڑوں میں سینکڑوں چرم پنتھی مارے جا چکے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں کشمیر کے حالات کون سا کروٹ لیتے ہیں، اس کا سب کو انتظار ہے۔ ماجد جہانگیر، بی بی سی، سری نگر۔
اب بات کرناٹک کی، جہاں سرکار گنوانے کے بعد جنتا دل سیکولر کے سامنے اگلی چنوتی پارٹی کو ایک جٹ بنائے رکھنے کی ہے۔ پارٹی کے اندر کے مت بھید کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ ایک دھڑا بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار کو سمرتھن دینے کی مانگ اٹھا رہا ہے۔ سنیے عمران قریشی کی رپورٹ۔
لوک سبھا کے چناؤ کے بعد کئی جنتا دل سیکولر کے ودھائکوں اور کارکرتاؤں نے سارجنک طور سے اور نجی طور سے بھی کانگریس سے گٹھ بندھن کو لے کر اپنی ناخوشی ظاہر کی تھی، اور نتیجے آنے سے پہلے ہی یہ سپشٹ ہو گیا تھا کہ جے ڈی ایس کے کارکرتا نے گٹھ بندھن کے امیدوار کو نہیں بلکہ بی جے پی کو متدان کیا تھا۔ کل جب بی جے پی کے بی ایس یڈیورپا وشواس مت کا پرستاو ودھان سبھا میں لانے والے ہیں تو جے ڈی ایس ودھائکوں کی اہم بیٹھک میں یہ سجھاؤ دیا گیا ہے کہ جے ڈی ایس کو بی جے پی سرکار کو سمرتھن دینا چاہیے۔ اس پر پورو جے ڈی ایس منتری اور ودھائک جی ٹی دیو گوڑا نے کہا، ہمارے ودھائکوں کی بیٹھک بلوائی گئی تھی ہمارے پارٹی کے بھوشیہ کے بارے میں چرچا کرنے کے لیے۔ کچھ سدسیوں کا ماننا تھا کہ ہم وپکش میں رہ کر سرکار کی جن ورودھی نیتوں کا ورودھ کریں، اور کچھ سدسیوں نے دباؤ ڈالا کہ ہم بی جے پی سرکار کو سمرتھن دیں۔ بہرحال ہم ایچ ڈی کمار سوامی کو ادھیکار دیا ہے کہ وہ نرنے لیں۔ یہ تھے جی ٹی دیوے گوڑا کے شبد۔ لیکن جب یہی سوال جے ڈی ایس کے سپرمو اور پورو پردھان منتری ایچ ڈی دیوے گوڑا سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے ہی اسٹائل میں کہا کہ وہ سرکار کا رچناتمک ورودھ کریں گے۔ ہمارے ابھی 34 ودھائک ہیں، ان میں سے اگر جی ٹی دیوے گوڑا کچھ بولیں تو ٹھیک ہے، ان کو سوتنترتا ہے۔ ہماری پارٹی ایک سرکار کا رچناتمک ورودھ کرے گی۔ یہ تھے جے ڈی ایس سپریمو ایچ ڈی دیوے گوڑا کے شبد۔ جے ڈی ایس کے 3 ودھائک اس مہینے بھاگی ہو گئے اور وہ ممبئی کے 5 ستارہ ہوٹل اور لوناوالا میں رکے ہوئے ہیں۔ یہ ودھائک بی جے پی کے آپریشن کملا کا شکار اس لیے بھی بن گئے کیونکہ وہ پارٹی کے کئی اندرونی معاملوں سے خوش نہیں تھے۔ کئی ودھائکوں نے اپنا نام نہیں بتانے کے شرط پر کہا تھا کہ وہ گٹھ بندھن سرکار بنانے کے بعد ودھائکوں کے ساتھ دونوں بھائی پورو مکھیہ منتری ایچ ڈی کمار سوامی اور منتری ایچ ڈی ریونا ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے۔ راجنیتک وشلیشک مہادیو پرکاش نے بی بی سی کو بتایا، ہاں جی ڈی ایس کا ایک طرح سے وبھاجن ہی ہونے والا ہے جیسے کہ ہمیں گوا میں دکھائی دیا۔ یہ سوموار کو نہیں ہوگا جب یڈیورپا وشواس مت لینے جا رہے ہیں، پر جے ڈی ایس کے ودھائک وشواس مت کو بہشکار کر سکتے ہیں۔ جے ڈی ایس کے نیتتو پر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ پارٹی سے زیادہ دیوے گوڑا کے پریوار کا راج چل رہا ہے۔ یہ تھے مہادیو پرکاش کے شبد۔ ایسے پرستھتی میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسپیکر رمیش کمار کیا نرنے لینے والے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ابھی بھی یاچکائیں ہیں جس سے وہ 13 بھاگی ودھائکوں کو ایوگیہ گھوشت کر سکتے ہیں۔ گروار کو اسپیکر رمیش کمار نے صرف 3 بھاگی ودھائکوں کو ایوگیہ گھوشت کیا تھا اور کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں وہ دوسروں کے بارے میں بھی نرنے لینے جا رہے ہیں۔ عمران قریشی، بی بی سی، بنگلورو۔
اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں آج سے نویشکوں کے لیے 2 دیوسیہ سمیلن ہو رہا ہے۔ اس کی شروعات گرہ منتری امت شاہ کریں گے، لیکن سمیلن شروع ہو اس کے پہلے ہی پچھلے سمیلن میں کیے گئے دعووں کو لے کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ سنیے سمیر آتمج مشر کی رپورٹ۔
لکھنؤ شہر کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہاں کوئی بڑا آیوجن ہونے والا ہے۔ اندرا گاندھی پرتشٹھان یعنی جہاں یہ کارکرم ہو رہا ہے، ایئرپورٹ سے وہاں کے راستے کو پوری طرح سے سجایا گیا ہے اور 2 دن تک عام ٹریفک کو دوسرے راستوں سے جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آج یعنی رویوار کو پردیش کے گرہ منتری امت شاہ نویشکوں کی 65,000 کروڑ روپے کی 200 سے زیادہ نویش پریوجناؤں کا شلانیاس کریں گے۔ راجیہ کے اپ مکھیہ منتری ڈاکٹر دنیش شرما نے اسے ایک ایتیہاسک آیوجن بتایا۔
1,00,000 کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ اتر پردیش میں آ رہا ہے۔ اتر پردیش ایک ایسا راجیہ بن رہا ہے जो माफिया संगठित अपराध से मुक्त प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, इसका इस बात का परिचायक है कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और केवल आईटी क्षेत्र में ही लगभग 60,000 करोड़ के आसपास के अनुबंध होने हैं।
इस आयोजन में देश के दिग्गज उद्योगपतियों के अलावा राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार रात तमाम उद्योगपतियों और आयोजन में पहुंच रहे अतिथियों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश में पिछले साल फरवरी में 4,28,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। इनमें से 60,000 करोड़ रुपए की 81 परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 29 जुलाई को किया था। अब एक साल बाद ही दूसरी बार परियोजनाओं का शिलान्यास समारोह हो रहा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि पिछली परियोजनाओं की स्थिति कोई बहुत उत्साहजनक नहीं रही। लखनऊ में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं,
जितनी परियोजनाओं की शुरुआत एक वर्ष पहले हुई थी उनमें से आधे से कम यानी एक तिहाई से थोड़ी ज्यादा परियोजनाएं ही वर्तमान में काम कर रही हैं। इनमें बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि पूर्व की सरकारों में पहले से ही जिन पर काम शुरू हो चुका था और उनका नेशनल इनॉग्रेशन हुआ है या नेशनल फाउंडेशन लिंग हुई है, जबकि वो उन परियोजनाओं पर काम पहले से चल रहा था। और अब प्रदेश की सरकार एक दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग से नहीं करने जा रही है, तो देखना होगा कि इन परियोजनाओं में से कितनों की शुरुआत होती है, क्योंकि इनमें ज्यादातर परियोजनाएं जो रियल एस्टेट सेक्टर की है वहाँ एक बार फिर से वित्त पोषण की कमी सामने आ सकती है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि MSME सेक्टर की कुछ परियोजनाएं जो कि कम बजट की हैं उनका काम जरूर शुरू हो सकता है।
बहरहाल इस बार गृह मंत्री अमित शाह राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थापित होने वाली 200 से ज्यादा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बताया जा रहा है कि यदि ये परियोजनाएं वास्तव में जमीन पर उतर आई तो इनसे 2,00,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब आज के अखबारों की बात आदर्श राठौर के साथ। जी आदर्श,
वात्सल्य, लगभग सभी अखबारों में महालक्ष्मी एक्सप्रेस की एक तस्वीर छपी हुई है। चारों तरफ पानी और बीच में ट्रेन रुकी हुई। ये मुंबई से कोल्हापुर जा रही थी और इसमें 1,050 यात्री सवार थे और 17 घंटों के और तीनों सेनाओं को इसमें शामिल होना पड़ा। इसके साथ ही एक और खबर जो लगभग सभी अखबारों में है वो ये है कि भारत प्रशासित कश्मीर में जिस तरह से सैनिकों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर स्थानीय दलों ने चिंता जताई है। उनको ये चिंता है कि 35 के साथ कहीं छेड़छाड़ ना हो रही हो जी। इसके साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि ईडी ने हैदराबाद के उस कारोबारी को गिरफ्तार किया है जिसकी शिकायत के आधार पर CBI ने अपने पूर्व उपनिदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज की थी। इसी अखबार में खबर है कि अमेरिका ने भारत के लिए जो C-27 मालवाहक विमान है उनकी सर्विस और उसके उपकरणों के लिए $670 मिलियन की सेल को मंजूरी दी है।
जी बहुत शुक्रिया आदर्श। और अब आदर्श राठौर की आवाज़ में ही सुनते हैं पाकिस्तान के उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा। इसे तैयार किया है BBC संवाददाता इकबाल अहमद ने।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते इमरान खान की अमरीका यात्रा से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहीं। इमरान खान पिछले हफ्ते 3 दिनों के अमरीकी दौरे पर गए थे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात के बाद ट्रंप ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने को कहा था। ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन कर दिया, लेकिन जाहिर है ये बात इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार पाकिस्तान लौटने के बाद इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर जमा पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा, आज लगा कि विदेश यात्रा करके नहीं बल्कि वर्ल्ड कप जीतकर लौटा हूं। इमरान खान ने खुद और उनकी पार्टी ने तो इसे ऐतिहासिक और किसी भी पाकिस्तानी नेता का सबसे सफल अमरीकी दौरा करार दिया, लेकिन पूरे हफ्ते पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात पर चर्चा होती रही कि आखिर इमरान खान को अमरीकी दौरे से क्या हासिल हुआ। अखबार एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है, कश्मीर समस्या पर दुनिया सक्रिय, चीन भी मध्यस्थता का समर्थक। अखबार के अनुसार अमेरिका के मध्यस्थता के प्रस्ताव का चीन के जरिए स्वागत किया जाना भारत के लिए एक और कूटनीतिक धक्का है। अखबार दुनिया ने सुर्खी लगाई है, भारत की एक और कूटनीतिक हार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ने का खतरा, कश्मीरियों का आंदोलन सफलता की ओर बढ़ने लगा। अखबार नवाए वक्त के अनुसार अमेरिका का मानना है कि इमरान ट्रंप की मुलाकात के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का समय आ गया है। नवाए वक्त ही में छपी एक खबर के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सैन्य मदद बहाल कर दी। अखबार लिखता है कि अमेरिका अब पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए $12,50,00,000 की टेक्निकल और लॉजिस्टिक मदद करेगा। अमरीकी विदेश मंत्रालय और यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी ने इसकी मंजूरी दी है। अखबार जंग में अफजाल रिहान ने संपादकीय पेज पर एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक है राष्ट्रपति ट्रंप और कश्मीर समस्या। अफजाल रिहान लिखते हैं कि इमरान खान के अमरीकी दौरे से उन्हें 80 के दशक के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद खान जुनैजो की याद आती है। जुनैजो ने 1986 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से मुलाकात की थी। लेखक के अनुसार जुनैजो का रीगन से मुलाकात का नशा महीनों नहीं उतरा और वो पाकिस्तान की लगभग हर रैली में इसी मुलाकात का जिक्र करते थे। लेखक कहते हैं कि ट्रंप के कश्मीर पर बयान से पाकिस्तान को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रंप की तबीयत से किसी भी समय कुछ भी संभव है।
उर्दू अखबारों की समीक्षा पेश कर रहे थे आदर्श राठौर, इसे तैयार किया था इकबाल अहमद ने। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल भारत के 20 साई प्रणीत सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए। इसके साथ ही जापान ओपन में भारत की चुनौती भी समाप्त हो गई। गैर वरीयता हासिल 20 साई प्रणीत शीर्ष वरीयता हासिल मेजबान जापान के केंटो मोमोता से 21-18 21-12 से हारे। आज फाइनल में केंटो मोमोता का सामना छठी वरीयता हासिल इंडोनेशिया के योनाथन क्रिस्टी से होगा, जिन्होंने एक अन्य सेमीफाइनल में गैर वरीयता हासिल डेनमार्क के यानो योर्गेंसन को 21-14 से हराया। वहीं महिला एकल वर्ग का फाइनल आज दो जापानी खिलाड़ियों तीसरी वरीयता हासिल नोजोमी ओकुहारा और चौथी वरीयता हासिल अकाने यामागुची के बीच खेला जाएगा। कल सेमीफाइनल में ओकुहारा ने कनाडा की मिशेल ली को और यामागुची ने बड़ा उलटफेर करते हुए दूसरी वरीयता हासिल चीन की चेन यू फेई को 21-15 से हराया। उधर भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अगले महीने से 2020 एक दिवसीय और टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले भारतीय एक क्रिकेट टीम का वेस्ट इंडीज में ही शानदार प्रदर्शन का दौर जारी है। भारत ए ने वेस्ट इंडीज ए को एंटीगा में खेले गए पहले अनधिकृत टेस्ट मैच में 6 विकेट से हरा दिया। दूसरी पारी में भारत ए को जीत के लिए 97 रनों का लक्ष्य मिला था, जो उसने अभिमन्यु ईश्वरन के 27 और श्रीकर भरत के 28 रन की मदद से 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले वेस्ट इंडीज ए की दूसरी पारी 180 रन पर सिमट गई। भारत ए के स्पिनर शाहबाज नदीम ने 47 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 1 अगस्त से शुरू होने जा रही एशेज सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया, जिसकी कमान टिम पेन को सौंपी गई है, जबकि टीम में डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ भी हैं। लेकिन विश्व कप में बेहद शानदार खेल दिखाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को टीम में जगह न मिलने से सभी हैरान हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने अपनी टीम घोषित की, जिसमें तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर जगह बनाने में कामयाब रहे। उधर दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच और अर्जेंटीना के युआन मार्टिन डेल पोत्रो अगले महीने होने वाले रोजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट से हट गए हैं। ये फैसला उन्होंने आराम के लिए किया।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी का रविवार अलसुबह 77 साल की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से बीमार थे। रूस में 30 विपक्षी नेताओं को सितंबर में होने जा रहे स्थानीय चुनावों में हिस्सा लेने से रोके जाने के विरोध में शनिवार को मॉस्को में प्रदर्शन हुआ। रूस के गृह मंत्रालय के अनुसार इस प्रदर्शन में शामिल 1000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की बड़ी रैली पर पुलिस ने शनिवार को आंसू गैस के गोले छोड़े। ये प्रदर्शनकारी पिछले सप्ताह नकाबपोश हथियारबंद लोगों के हमले के खिलाफ उत्तरी जिले में प्रदर्शन कर रहे थे। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रून लिमेयर ने अमरीका से गुजारिश की है कि वो बदले की भावना से कोई टैक्स न लगाएं। दरअसल फ्रांस ने प्रमुख इंटरनेट कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने की योजना बनाई है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू हो गया है। मतदान 28 सितंबर को होगा। म्यांमार सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों में रह रहे रोहिंग्या समुदाय के नेताओं से मुलाकात की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी अजीत सारथी के हाथ। दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।